Friends, we are now going to see chapter 14, which deals with transfer of the instrument, transfer of a negotiable instrument. See, why do we take up transfer? Why is the necessity to transfer the instrument from one person to another? Usually this is done when we endorse the instrument in favor of someone else. We saw in the previous chapter in endorsements, once the person who is holding it signs at the back, please pay to Mr. X, he signs and then he hands over the instrument to Mr. X. What has he done? He has handed over, he has transferred the instrument from his hand to the hands of Mr. X. But it is not the mere passing of the instrument, the piece of paper from one hand to another. What has actually been transferred is the interest, the right to the payment. The money that which Mr. A or B was to get, now Mr. X is going to get. So the title to the benefit, the title to the instrument is actually shifted, is transferred from one person to another. So transfer here means not just the physical movement of the instrument from one person to another, it is the shifting of the benefit from one person to another. The right, the entitlement to get the money, that is shifted, transferred from one person to another. Now the shifting of the benefits, the transfer of the benefit, it is done by way of negotiation. The instrument is said to be negotiated. Mere endorsement, okay, it is endorsed in favor of the other person, so you have transferred the rights. But this entire process is known as negotiation. And that is why the instruments are called as negotiable instruments. And the entire act is known as Negotiable Instrument Act. Any negotiable instrument can be transferred to another person by way of negotiation. So transferring the instrument is actually known as negotiation. So this any negotiable instrument can be transferred. Whether the negotiable instrument is a check or a bill of exchange or a promissory note, or a demand draft, or a dividend warrant, interest warrant, all these negotiable instruments can be transferred to another person by way of negotiation. Now, what is negotiation? Negotiation means the transfer of the instrument to any person so that that person becomes the holder of the instrument. The other person, the person who is going to receive the money now, he will become the holder because the instrument is handed over to him. After his name is mentioned on the backside that please pay to Mr. X. So the instrument is handed over to Mr. X. This procedure is known as negotiation. So the transfer, not just the physical act of handing over the paper to the other person, but shifting the rights, the title is also taken care of. This entire thing is known as negotiation. This means that after negotiation, the transferee becomes the owner and gets the rights of the holder. So once negotiation is done, that means once the bill is endorsed in favor of somebody else and it is handed over to the other person, that other person becomes the holder of the instrument and he becomes the true owner of the money mentioned in the instrument. Now the person who has received the instrument, the person who is going to get the amount, who is now entitled to the payment, he is the transferee. The person who gave it to him, he is the transferor. The transferee will get a good title even if the transferor did not have a good title. This we have been seeing right from the beginning, the very meaning of the word negotiation, the very meaning of the word negotiable instrument, this says that the person who receives it after negotiation will get a good title even if the person who is transferring does not have a good title. In the normal circumstances, if there is a property which is transferred from one person to another, I have this mobile with me, I give it to my friend, that friend becomes the owner. If I am really entitled to own this mobile, now she is also entitled to own the mobile. But yadi ye mobile maine chori ki, और ये मोबाइल चोरी का माल है, तो शी इज ऑल्सो ओनिंग अ मोबाइल विच इज अ चोरी का माल. सो शी कैन नॉट बिकम द ट्रू ओनर. द ट्रू ओनर इज समबडी हु लॉस्ट द मोबाइल. मैंने चोरी करके ले लिया और ये मैं किसी और को देती हूँ, वेदर आई सेल और जस्ट हैंड ओवर, दैट पर्सन इवन इफ ही पेज डबल द अमाउंट, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द ओनरशिप. ओनरशिप इज विद द ट्रू ओनर, द वन हु लॉस्ट द मोबाइल. पर ये पूरा जो सिचुएशन है, इट चेंजेस व्हेन इट कम्स टू नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. इन द केस ऑफ अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, इवन इफ आई हैव एन इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स्ड इन माई फेवर बाय बी एंड आई हैव नॉट एक्चुअली पेड एनी मनी टू बी, आई एम नॉट सपोज टू गेट एनी मनी फ्रॉम बी, बट उसने मुझे एंडोर्स करके दे दिया बिकॉज आई फोर्स्ड हिम एट गन पॉइंट, चलो साइन करो मेरे नाम पे करवा दो. उसने कर दिया, आई एम नॉट एंटाइटल्ड द पेमेंट, बट स्टिल आई मेड हिम डू इट. नाउ आई एंडोर्स इट इन फेवर ऑफ समबडी बिकॉज देर इज अ वैलिड ट्रांजेक्शन बिटवीन मी एंड दैट समबडी विल गेट टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट, ही इज एंटाइटल टू द पेमेंट. दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, दैट द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल इवन इफ द ट्रांसफरर डज नॉट हैव अ गुड टाइटल. See, the transferee will not get a good title under certain circumstances. Normal circumstance, yes, the transferee will get a good title because it is a negotiable instrument. So negotiation means that you can pass on a good title even if you don't have. But there are certain cases where the transferee will not get a good title. तो कहाँ पे है? जहाँ holder signature is forced. See, I am holding the instrument. मेरा सिग्नेचर किसी और ने फोर्स करके उसको नेगोशिएट करके किसी और को ट्रांसफर किया, तब सिंस माय सिग्नेचर इज फोर्स्ड, दैट अदर पर्सन इवन इफ ही हैज पेड द अमाउंट, इवन इफ ही हैज गिवन डबल द अमाउंट, ही विल नॉट गेट अ गुड टाइटल. ही कैन नॉट डिमांड पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई बिकॉज द सिग्नेचर इज फोर्स्ड. ओरिजिनल सिग्नेचर इज फोर्स्ड और सब्सिक्वेंट होल्डर सिग्नेचर इज फोर्स्ड, द एंडोर्सी द ट्रांसफरी विल नॉट गेट अ गुड टाइटल. द इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. शुरू में जब इंस्ट्रूमेंट बनाया तभी उसमें ही गलतियां थी, सो इट इज नॉट अ वैलिड नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. सो इन सच केसेज ऑल्सो द ट्रांसफरी विल नॉट गेट अ गुड टाइटल, क्योंकि वो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके आधार पे आगे के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इट सेल्फ इज इनवैलिड बिकॉज the definition of a negotiable instrument is not fulfilled in that. So, isliye the instrument is not valid. Ab initio means right from the beginning. Then any negotiation thereafter, the transferee does not get a good title. In the third case, the instrument is stolen from the maker or drawer and then transferred to someone else. In A, we are saying the holder's signature is forged. थर्ड में क्या कह रहे हैं, द इंस्ट्रूमेंट इज स्टोलन. इंस्ट्रूमेंट इज वेरी मच वैलिड, मेरा सिग्नेचर सही है उस पे, पर ये मेरे हाथ से चोरी हुई है और वो किसी और को नेगोशिएट किया गया है. तो देन इन दैट केस, एंड इट इज स्टोलन नॉट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द एंडोर्सर और सब्सिक्वेंट, इट इज स्टोलन राइट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन द मेकर ड्रॉअर एंड देन इट इज ट्रांसफर टू समवन एल्स. द वेरी इनिशियल फर्स्ट ट्रांसफर फ्रॉम द मेकर द ड्रॉअर द वन हु गेव बर्थ टू द इंस्ट्रूमेंट, उसी के हाथ से चोरी हो गई और वो किसी और को एंडोर्स किया, नेगोशिएट किया, तो देन दैट ट्रांसफरी डज नॉट गेट अ गुड टाइटल. नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफरिंग द राइट्स एंड टाइटल इन द इंस्ट्रूमेंट टू समबडी बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. सो नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट दे गो हैंड इन हैंड, दे गो टूगेदर. नेगोशिएशन में क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एंडोर्समेंट में भी वही कर रहे हैं. यू आर राइटिंग, यू आर साइनिंग एट द बैक साइड, प्लीज पे टू मिस्टर सी, प्लीज पे टू मिस्टर डी, प्लीज पे टू एक्स वाई जेड कंपनी, और फिर साइन करते हैं. तो नेगोसिएशन ऑल्सो मीन्स दैट, एंड यू आर हैंडिंग ओवर द इंस्ट्रूमेंट टू द अदर पार्टी. सो दिस इज एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, दैट इज नेगोसिएशन एंड ट्रांसफरिंग द टाइटल द बेनिफिट्स टू द अदर पार्टी. दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज नेगोसिएशन. Negotiation is complete ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द ट्रांसफरी. एंडोर्समेंट कर दिया मैंने और मेरे ही पास रख लिया तो देट इज नॉट नेगोसिएशन. आई हैंड ओवर द इंस्ट्रूमेंट टू द अदर पार्टी, देन नेगोसिएशन इज कंप्लीट. सो दैट अदर पार्टी कैन नाउ गो एंड क्लेम पेमेंट आइदर ऑन डिमांड और ऑन अ ड्यू डेट. इन द केस ऑफ बेरर इंस्ट्रूमेंट्स देर इज नो नीड फॉर एंडोर्समेंट. जहां पे बेरर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पे एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज पेबल टू द बेरर. नेगोसिएशन टेक्स प्लेस बाय मियर डिलीवरी. हम सिर्फ हाथ में दे दिया उसको तो भी हो गया. आई हैव जस्ट साइंड एट द बैक एंड गिवन इट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और आई जस्ट हैंड ओवर द इंस्ट्रूमेंट टू समबडी एंड आई से जाओ पैसे ले लो. तो दैट इज मियर डिलीवरी, दैट इज ऑल्सो अलाउड. सो इन द केस ऑफ बेरर इंस्ट्रूमेंट्स देर इज नो नीड फॉर एंडोर्समेंट. किया तो चलता है, नहीं किया तो भी चलता है, बट डिलीवरी इज रिक्वायर्ड. सो इन आइदर केस whether you're endorsing and then handing over or just handing over, delivery is a must. Then the transferee gets a good title. Now who can negotiate? Negotiable instrument can be negotiated and the subsequent person gets a good title. But who can negotiate? Can anybody negotiate? जिसके हाथ में instrument आ गया, मेरे हाथ से गुम हुआ, मेरा हैंड बैग ही चोरी हो गया और फिर उसमें से किसी ने उठा लिया एंड देन ही कैन डू इट? नो, इट इज ओनली द ट्रू ओनर हु कैन नेगोशिएट. सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड बाय द सोल मेकर, द ड्रॉअर, द पेई और द एंडोर्सी. ऑल दोज हु आर कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट, द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट, दे कैन नेगोशिएट. दे कैन ट्रांसफर द राइट्स, देयर ओन टाइटल टू द अदर पार्टी. A maker or drawer can negotiate only if the instrument is drawn to his own order. Maker or drawer, I have prepared the instrument. If it is in my favor, then I can negotiate it further. If I am asking Mr. B to pay to Mr. C, then I cannot negotiate because I am only the originator. Maine sirf instruction diya, Mr. B, please pay to Mr. C. Then I cannot negotiate it. I can negotiate only if it is drawn to my order. If there is a restrictive endorsement on the instrument, the endorsee cannot negotiate further. If I have endorsed on the back of the bill, please pay to Mehta and Sons only. Ab ye Mehta and Sons jo firm hai, they cannot further negotiate or transfer the bill to anybody else. पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, मेहता एंड सन्स, बिकॉज इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट. अभी ये आगे नेगोशिएट नहीं हो सकता है. इफ इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड बाय अनलॉफुल मीन्स, दैट पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट. किसी ने चोरी कर ली, किसी ने जबरदस्ती मेरे हाथ से छीन लिया, तो दैट पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट इन फेवर ऑफ एनीवन एल्स. सो नेगोशिएशन इज पॉसिबल ओनली बाय द पार्टीज कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट. Negotiation can be done only by those people who are allowed to negotiate, who have interest, title in the instrument, and it can be given by endorsement and delivery. When can you negotiate? Kabhi bhi kar sakte hain. After the instrument is created, the instrument has come into effect, then you can negotiate up to the date of payment. A negotiable instrument can be negotiated any time up to the date of final payment of the instrument. Due date tak, I prepare a bill today, it is payable 3 months from today. So, ye 3 mahine ke andar kabhi bhi isko negotiate kar sakti hoon main. I negotiate it after 1 week, after 10 days, that person negotiates it. Ye ek haath se dusre haath se teesre haath, ye jaate rehta hai. But the final negotiation will happen only up to the due date. यहाँ आज से 3 महीना, उसके बाद once the due date is arrived, once the bill is matured, उसके आगे negotiation allowed नहीं है. You cannot do it after the maturity date or after the payment is done. Negotiation of the instrument terminates only upon payment, satisfaction of the bill or after maturity. मैच्योर हो गया बिल, ड्यू डेट आ चुका है, तो उसके आगे नेगोशिएट नहीं करेंगे. या पेमेंट हो गया उसका, तो उसके बाद भी नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। एक बार बिल पेश हो चुका है तो हो चुका है बस, नाउ दैट बिल लाइफ इज ओवर, दैट बिल लाइफ इज स्पेंट, नाउ दैट बिल विल ओनली बी फाइल्ड। तो उसके बाद उसका नेगोशिएशन का सवाल ही नहीं है। सो नेगोशिएशन विल स्टॉप टर्मिनेट अपॉन पेमेंट। नाउ सपोज द बिल इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, आज थोड़ा सा, अगले महीने में, अगले महीने में, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 12 इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट इज मेड। तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो चुका है विथ इंटरेस्ट, देन देयर आफ्टर देर इज नो फर्दर नेगोशिएशन। नाउ द लाइफ ऑफ द बिल इज स्पेंट, उसके बाद नो नेगोशिएशन। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन फाइनल पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एनी पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी डज नॉट स्टॉप द नेगोशिएबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इफ देर इज पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी, बिल इज पेबल 3 मंथ्स फ्रॉम टुडे। कल यदि मुझे किसी ने पैसा दे दिया, 3 महीने तो अभी आने के बाकी हैं, बट समबडी गिव्स मी पेमेंट टुडे, बट स्टिल आई कैन नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट बिकॉज देर इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, सो आई कैन कीप ऑन नेगोशिएटिंग टिल दैट डेट। आई प्रिपेयर अ पोस्ट डेटेड चेक, द चेक इज पेबल ऑन 4th ऑफ डिसम्बर। आई कैन कीप ऑन नेगोशिएटिंग, मैं उसको ट्रांसफर कर सकती हूँ किसी और को, किसी और को। सो पेमेंट उसने दिया नहीं दिया, इट्स इमटीरियल, ड्यू डेट आना है, इट इज नॉट येट मैच्योर। सो टिल द मैच्योरिटी डेट आई कैन नेगोशिएट, आई कैन एंडोर्स, आई कैन ट्रांसफर, बट आफ्टर दैट इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी, बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। जस्ट एज वी सॉ इन द चैप्टर ऑन एंडोर्समेंट्स, इन नेगोशिएशन ऑल्सो यू कैन नेगोशिएट बाय सिंपली हैंडिंग ओवर, लाइक फॉर बेरर इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट हैंड ओवर, इट्स अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, सो द बेरर, द होल्डर विल गेट द पेमेंट, यू हैंड ओवर, दैट इज डिलीवरी। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दिस हैपन्स इन द केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स, वेर इट इज पेएबल टू एक्स वाई जेड एंड ऑर्डर, वेर इट इज पेएबल टू सी और ऑर्डर, वहां पे एंडोर्समेंट की जरूरत है, एंडोर्समेंट करके फिर हैंड ओवर करेंगे, सो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। नेगोशिएशन ऑफ अ डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट विल नॉट पास ऑन एनी गुड टाइटल टू द ट्रांसफरी। बिल इज नॉट ऑनर्ड, पेमेंट नहीं आया उसका, ड्यू डेट भी हो गया है, उसके बाद नेगोशिएट करेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है, द अदर पार्टी, द ट्रांसफर इज नॉट गोइंग टू गेट अ गुड टाइटल। सो नेगोशिएशन बेसिकली हैज नो मीनिंग वंस द बिल इज डिसऑनर्ड, बट द अदर पार्टी इज नॉट गोइंग टू गेट अ गुड टाइटल। पार्ट अमाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाई नेगोशिएशन और एंडोर्समेंट, जस्ट एज वी सॉ इन द केस ऑफ एंडोर्समेंट चैप्टर, यू आई कैन नॉट एंडोर्स पार्ट अमाउंट। 5 लाख का बिल है, उसमें से 2 लाख मैंने एक के नाम पे ट्रांसफर किया, 2 लाख बी के नाम पे और 1 लाख सी के नाम पे, ये अलाउड नहीं है। नो नेगोशिएशन इन पार्ट्स, सो पार्ट अमाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय नेगोशिएशन और बाय एंडोर्समेंट, दिस इज नॉट अलाउड। असाइनमेंट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट? आई असाइन माय राइट्स टू यू, आई असाइन माय प्रॉपर्टी टू यू। नो वी हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वेयर वी टॉक अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। I am a money lender. I am giving you a loan. I am giving you a loan of 10,000 rupees. I take from you your wristwatch and keep with me. And then I give you the loan. फिर एक महीने के बाद आप पैसा जमा करेंगे और ये रिस्ट वॉच वापस ले जाएंगे। आपने क्या किया, वो रिस्ट वॉच मेरे पास रखा है, गिरवी रखा है आपने 1 महीने के लिए, टिल द लोन इज टू बी रीपेड। और यू मे कीप एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, योर हाउस प्रॉपर्टी, यू टेक अ लोन ऑफ 10 लाख्स फ्रॉम मी और वो हाउस प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स मेरे पास रख देते हैं। यू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन माई नेम फॉर अ टेम्पररी पीरियड, और यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी, यू आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू मी। तो ये जो असाइनमेंट है, this is possible wherever there is a money lending aspect coming into picture. तो जहां पे पैसा उधार में दिया गया है, I need something as security. So that security is assigned in my favor. Once the loan is repaid, the security goes back to your hands. Negotiable instrument kya hai? Negotiable instrument is a paper, a document which gives you certain right to some money. तो ये जो instrument है, you transfer that also in my name as security for the loan that you're taking. So this is allowed. So court recognizes assignment of a negotiable instrument in favor of the transferee. So assignment of movable properties or immovable properties is slightly different. Assignment of a negotiable instrument is slightly different. Negotiable instruments can be assigned under section 130 of the Transfer of Properties Act. Because negotiable instruments, they represent money. Usme paisa involved hai. So that is why they can be assigned. Whatever money I am going to get on a due date, usko main girvi rakke aaj loan le sakti hun. The assignee can sue the maker, drawer or drawee to recover the amount mentioned in the instrument. You have a negotiable instrument in your favor. मान लो 2 लाख का बिल आपके फेवर में है, आपको पैसा मिलने वाला है वो 10 दिसंबर को, आपको आज पैसे की जरूरत है. यू हैव असाइन दैट इंस्ट्रूमेंट इन माई फेवर एंड टेकन द लोन फ्रॉम मी टूडे. नाउ ऑन द ड्यू डेट आई कैन डिमांड पेमेंट फ्रॉम यू. इफ यू डोंट पे, आई कैन डिमांड द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉअर ऑफ द बिल. सो द ड्रॉअर ऑफ द बिल हैज टू मेक द पेमेंट टू मी on the due date when you don't pay, and if he also doesn't pay, I can file a suit against that drawer. Although, you know, directly there was no transaction between the drawer of the bill and me, the transaction was between you and me, but you got the instrument from the drawer. So wo bill jo mere naam pe assign kiya hai, I have the right to file a suit against the maker or the drawer of the bill or even the drawee to recover the amount mentioned in the instrument. This is the effect of assignment of the negotiable instrument in favor of a third party. Thus, assignee gets the benefit of endorsement. You have not actually transferred the bill in my name. You have assigned it to me as a security. But I, by virtue of being an assignee, I also become a transferee. So, transferee ko jo kuch benefits milta hai, wo assignee ko bhi milta hai. So, assignee gets the benefit of endorsement. But in negotiation, while the transferee can get a better title than the transferor, in assignment, the assignee does not get a better title. Ye major farak hai between assignment and endorsement or negotiation. In negotiation, when you negotiate a bill, you transfer the rights and benefits to the other party. That other party gets a good title even if you don't have. But if you are assigning the bill to the other party as a security, aapke paas achha title nahi hai, to usko bhi achha title nahi milega. This is the effect of assignment. So friends, I hope you have understood what is negotiation, what is endorsement, what is acceptance, and how these things come into effect and how they play their role in the trade business. Okay, thank you.